रविवार 2 अक्टूबर दिनभर के सभी सुनने वालों को निखिल रंजन का नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने कभी दूसरे देश पर हमला नहीं किया। सर्जिकल स्ट्राइक के दावे के बाद पहली बार आए जनता के सामने।
यह देश कभी जमीन का भूखा नहीं रहा। इस देश ने कभी भी दुनिया में कहीं आक्रमण नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी 1.5 लाख से ज्यादा हमारे जवान प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए।
गुजरात के पोरबंदर में पाकिस्तानी मछुआरों की नाव पकड़ी गई, 9 मछुआरे गिरफ्तार। एसडी बर्मन को 110वें जन्मदिन पर आज विवेचना में याद कर रहे हैं रेहान फजल।
जब प्यासा के बाद साहिर ने कहा कि देखिए अगर हमारा पोएम नहीं होता तो आपका तो ट्यून ट्यून ही रह जाता।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार हरिता कांडपाल से। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में चरमपंथियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय सेना के दावे के बाद बढ़े तनाव के बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत किसी की जमीन हथियाने के लिए भी भूखा नहीं है, बल्कि भारत के सैनिकों ने देश और दूसरों के हितों के लिए कई बलिदान दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। भारत आज संयुक्त राष्ट्र में पेरिस पर्यावरण संधि पर आधिकारिक मंजूरी देगा। पेरिस पर्यावरण संधि से ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने की दिशा में तेजी आएगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन आज अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के मौके पर हस्ताक्षर किए हुए दस्तावेज सौंपेंगे। इसी साल अप्रैल में 170 देशों ने पेरिस में इस ऐतिहासिक संधि पर सहमति जताई थी, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए विकासशील और विकसित देश एक साथ आएंगे। भारत ने भी इस समझौते पर सहमति जताई थी। रूस के समर्थन के साथ सीरियाई सेना ने अलप्पो शहर में जारी लड़ाई में सफलता हासिल की है। ब्रिटेन आधारित सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स संस्था ने बताया है कि कल रात भर चली बमबारी में विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों को निशाना बनाया गया है। सीरियाई नागरिक सुरक्षा संस्था व्हाइट हेलमेट्स के इस्माइल अब्दुल्ला ने ताजा हालात के बारे में ये जानकारी दी।
Today the bombing started from the morning. There are airstrike in the.
आज सुबह से ही बमबारी जारी है। अल माजा में हवाई हमले किए गए हैं। राहत टीमें लोगों को मलबे से निकालने में लगी हुई हैं। कोई भी यहां लोगों को मदद पहुंचाने के लिए नहीं जा पा रहा था। भारी बमबारी की वजह से कोई गाड़ी राहत सामग्री लेकर यहां नहीं जा पा रही थी। इस्माइल अब्दुल्ला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। इथियोपिया के ओरोमिया क्षेत्र में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने तितर बितर किया, जिसके बाद भगदड़ मच गई और इसमें कई लोगों की मौत की खबर है। इथियोपिया की सरकार ने भी पुष्टि की है कि भगदड़ में कुछ लोगों की मौत हो गई है। कुछ पत्रकारों ने गड्ढों में कई शव देखने की जानकारी दी है। वहीं विपक्ष के सूत्रों का कहना है कि करीब 50 लोगों की मौत हुई है। इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा से 42 किलोमीटर दूर हजारों की संख्या में लोग एक धार्मिक उत्सव बिशोफ्तु में शामिल होने के लिए जमा हुए थे, जब ये हादसा हुआ। तुर्की की पुलिस ने धार्मिक प्रचारक फेतुल्ला गुलेन के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। तुर्की ने जुलाई में तख्ता पलट की नाकाम कोशिश के लिए फेतुल्ला गुलेन को जिम्मेदार बताया है। फेतुल्ला गुलेन के भाई कुतुबुद्दीन गुलेन को उनके रिश्तेदार की दी गई एक जानकारी के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी रेडियो पर दिनभर में आपका स्वागत है। आज आपके साथ निखिल रंजन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारतीय सेना की ओर से नियंत्रण रेखा के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा किया गया है, और इस दावे के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए। उन्होंने कहा है कि भारत कभी भी जमीन का भूखा नहीं रहा और उसने कभी भी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में प्रवासी भारतीय केंद्र के उद्घाटन के मौके पर अप्रवासी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे, और इसी दौरान उन्होंने ये बात कही। पूरा ब्यौरा सुनिए रोहित जोशी की इस रिपोर्ट में।
विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय को सुविधा पहुंचाने के मकसद से गांधी जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय केंद्र का उद्घाटन किया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक के दावे के बाद से प्रधानमंत्री का यह पहला सार्वजनिक संबोधन था। हालांकि प्रधानमंत्री ने इस पर सीधे तौर पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत ने कभी भी किसी दूसरे देश पर हमला नहीं किया है।
यह देश कभी जमीन का भूखा नहीं रहा है। इस देश ने कभी भी दुनिया में कहीं आक्रमण नहीं किया है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी और के लिए 1.5 लाख से ज्यादा हमारे जवान प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हो गए, लेकिन हम भारतीय उन शहीदों के साथ जुड़ करके विश्व को हमारे इतने बड़े बलिदान का एहसास नहीं करा पाए। विश्व इस बात को स्वीकार करे कि हम वो लोग हैं जो किसी के लिए मरते हैं, हम वो लोग हैं जो किसी के लिए बलिदान देते हैं।
इस मौके पर अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय प्रवासियों से जुड़े कई मसलों पर बात की। उन्होंने भारतीय प्रवासियों के दूसरे देशों में अपने दिमाग का इस्तेमाल करने यानी ब्रेन ड्रेन पर भी टिप्पणी की और कहा कि ब्रेन ड्रेन को ब्रेन गेन में बदलने की जरूरत है।
सालों तक हम देखते आए, एक ही शब्द सुनते आए कि हमारे लोग पढ़ लिख करके तैयार होते हैं, विदेशों में चले जाते हैं। हमारी जो चिंता थी, इसको ब्रेन गेन में कन्वर्ट किया जा सकता है।
इस मौके पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी मौजूद थी। उन्होंने कहा,
एक स्मारक है हमारे उन पूर्वजों का जो रोटी कमाने के लिए देश छोड़कर परदेश गए थे। ये यादगार है उस मोह की जो बरसों बरस की यातनाएं झेलने के बाद भी उन्होंने अपने देश के लिए पाले रखा था।
नई दिल्ली में बनाए गए प्रवासी भारतीय केंद्र में एक ऑडिटोरियम और एक म्यूजियम भी बनाया गया है। यहाँ प्रवासियों के लिए भारत की विविधता, संस्कृति और उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारियाँ उपलब्ध कराई गई हैं। उधर महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भी दिल्ली समेत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। रोहित जोशी, BBC दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत किसी दूसरे की जमीन का भूखा नहीं है। इधर गुजरात से खबर आई है कि वहां पोरबंदर में एक पाकिस्तान के बोट को पकड़ा गया है। वैसे तो ये बोट मछुआरों की है, लेकिन शायद भारतीय जलसीमा में प्रवेश करने के कारण इसे पकड़ लिया गया। अहमदाबाद से स्थानीय पत्रकार प्रशांत दयाल हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं कि और इस बारे में क्या जानकारी है उनके पास। प्रशांत जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ये बताइए कि ये जो पकड़े गए लोग हैं वो कौन हैं और कहाँ हैं इस वक्त?
मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय गुप्तचरों के द्वारा दी गई सूचना के बाद गुजरात की पाकिस्तान से जुड़ी जमीनी और समुद्री सीमाओं पर सतर्कता बढ़ाई गई है। उसके चलते आज सुबह 10:15 बजे कोस्ट गार्ड के समुद्र पालक नाम जहाज ने पाकिस्तानी बोट को भारतीय जल सीमा में पाया। वो बोट में 9 पाकिस्तानी मछुआरे थे जिनको पोरबंदर अभी लाया गया है, जिनकी पूछताछ हो रही है। कोस्ट गार्ड के अधिकारियों का कहना है फिलहाल वो पाकिस्तानी मछुआरे हैं और गलती से भारतीय सीमा में आए हैं, ऐसा प्राथमिक तौर पर लगता है। फिर भी उनकी पूछताछ हो रही है और भारत की और एजेंसियां भी वहां पे पहुंची है जो उनकी पूछताछ के बाद ये तय करेगी कि वो गलती से भारतीय सीमा में आए हैं या जानबूझ के उनके इरादे कोई और है, उसकी पूछताछ अभी हो रही है।
तो प्रशांत जी अभी क्या ये जो बोट है वो कितनी बड़ी है और उसका अभी वो कहां पर है?
ये जो बोट पाई गई है, पाकिस्तान की बोट है, वो मछुआरों की ही बोट है। बोट में से ऐसी कोई भी संदिग्ध चीजें भी नहीं मिली या इनका व्यवहार भी संदिग्ध पाया नहीं गया है। लेकिन जल सीमा में सतर्कता बढ़ाए जाने के कारण भारतीय जल सीमा में कोस्ट गार्ड और गुजरात मरीन पुलिस का पेट्रोलिंग काफी तेज कर दिया गया है। उसके चलते और इस हालात में मछुआरे मिले हैं, इसलिए गुजरात मरीन पुलिस और कोस्ट गार्ड दोनों ही मछुआरों की पूछताछ कर रही है और भारतीय गुप्तचर विभाग के अधिकारी भी अभी ही पोरबंदर पहुंचे हैं। उन्होंने कोस्ट गार्ड ने ये कहा है अगर ये मछुआरे ही निकले तो मुंबई येलो गेट पुलिस थाने में इनके खिलाफ केस दर्ज करवाया जाएगा।
जी प्रशांत जी, तो फिलहाल कोई और बात सामने नहीं आई है कि इनका संबंध किसी ऐसे खतरे की बात या कोई संदिग्ध गतिविधि की बात अभी तक सामने नहीं आई है?
नहीं, कोस्ट गार्ड भी इस बात को खारिज करता है कि अभी कोई खतरा फिलहाल तो मालूम नहीं होता है।
जी प्रशांत दयाल, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के दावे के बाद से सीमा पर चौकसी काफी बढ़ा दी गई है और कश्मीर से लेकर के गुजरात और तमाम उन जगहों पर जहां पाकिस्तान से भारत की सीमा लगती है वहां अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। इस बीच में वाघा बॉर्डर से अभी ये खबर आ रही है कि वहां कुछ तनाव बढ़ गया है और पथराव की भी कुछ खबरें हैं। हमारे साथ स्थानीय पत्रकार रविंदर सिंह रॉबिन जुड़ रहे हैं। जी रॉबिन, क्या जानकारी है, क्या हुआ है वहाँ पर वाघा सीमा पर?
ऑपरेशन सर्जिकल स्ट्राइक के बाद वाघा पर रिट्रीट सेरेमनी देखने वालों के लिए एक बार तो मना कर दिया गया था, दर्शकों को 2 अक्टूबर तक मना कर रखा था, लेकिन आज बीएसएफ ने लगभग 150-200 के करीब लोगों को अंदर आने दिया रिट्रीट देखने के लिए। और जब रिट्रीट 5:15 के करीब शुरू होने वाली थी तो पाकिस्तान की तरफ से जो लोग वहां पे रिट्रीट देखने आए थे वहां से किसी ने 2-3 पत्थर मारे जो कि वीआईपी गैलरी में जो लोग बैठे थे देखने के लिए उनको लगे। हालांकि कोई सीरियस इंजरी नहीं हुई है, लेकिन ये वाघा सरहद पर पिछले 15-20 साल में पहली बार मैंने ऐसा देखा कि ऐसा हुआ है। और इससे इसके बाद वहां पे फ्लैग मीटिंग की गई और कन्वे किया गया पाकिस्तान को कि अपनी तरफ से इस तरह के तनाव को ना बढ़ाए।
इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है, अब सब कुछ सामान्य हो गया है?
देखिए रिट्रीट 6:15 फ्लैग लोरिंग के बाद एकदम से खत्म हो जाती है और लोगों को वापस भेज दिया जाता है। उसके बाद तो नॉर्मल तो हो गया है, लेकिन पिछले कुछ 2-3 दिन में बीएसएफ के सोर्सेज बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से उनके ही लाउड स्पीकर्स, रेंजर्स के लाउड स्पीकर्स को यूज करके कश्मीर की नारे लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान की धरती पर, और इस तरह की तनाव वाली बातें भी हो रही।
जी रविंदर सिंह रॉबिन, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। वाघा सीमा पर जो दैनिक कार्यक्रम होता है रिट्रीट का, उस दौरान कुछ नारेबाजी और पथराव हुआ है। हालांकि इस दौरान किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं दिनभर निखिल रंजन के साथ। ऐसा बहुत कम देखने में आता है कि एक राजकुमार एक आम आदमी की जिंदगी जिए और एक शास्त्रीय संगीतकार आम श्रोताओं के लिए गानों की धुन बनाए। सचिन देव बर्मन ने 3 दशकों तक हिंदी फिल्मों का संगीत देकर ये कारनामा अंजाम दिया था। एसडी बर्मन की 110वीं वर्षगांठ पर उन्हें याद कर रहे हैं रिहान फजल आज की विवेचना में। आमतौर पर आप ये कार्यक्रम शुक्रवार को सुनते हैं, लेकिन ज़्यादा खबरें होने की वजह से और कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण हम ये कार्यक्रम आपको नहीं सुना पाए थे। आज सुनिए विवेचना।
एक बार मशहूर कवियत्री अमृता प्रीतम ने अपने प्रेमी इमरोज को खत लिखकर कहा था, मेरे कहने से ग्रामोफोन चलाना और बर्मन की आवाज में ये गाना सुनना, सुन मेरे बंधुरे, सुन मेरे मितवारे, और फिर मुझे बताना कि वो लोग कैसे होते हैं जिन्हें कोई इस तरह आवाज देता है। अमृता प्रीतम ही नहीं, ऐसे अनगिनत लोग हैं जो सचिन देव बर्मन के गायन और संगीत के कायल और मुरीद हैं। खगेश देव बर्मन भी सचिन देव बर्मन की तरह त्रिपुरा के राजघराने से आते हैं और उन्होंने एक किताब लिखी है एसडी बर्मन द वर्ल्ड ऑफ हिज म्यूजिक।
मैं सचिन देव बर्मन को सिर्फ एक वर्ड में बोलना चाहता हूँ, ही इज इम्पॉसिबल, मीन्स असंभव। ही वाज इम्पॉसिबल टू इमिटेट, इम्पॉसिबल टू बाईपास। इनका जो गले था, अनुनासिक था, नेजल साउंड एंड थीन वॉइस, उन्होंने जो किया बॉलीवुड का हिस्ट्री में, ये है फोक सॉन्ग का साथ क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक का साथ फोक सॉन्ग, मॉडर्न सॉन्ग, ही मिक्स्ड अप ऑल दिस together and gave a new meaning to the music of Bollywood. जो गाना भी वो गाता था उनपे उनका stamp था, this is the song of Sachin Dev Barman. He sang in Hindi movie, उरे माझी मेरे साजन है उस पार, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, and सफल होगी तेरी आराधना,
सफल होगी तेरी आराधना। धना काहे को रोए। दिया टूटे तो है माटी, जले तो ये ज्योति बने।
गुरुदत्त की फिल्म प्यासा अपने जमाने की बहुत लोकप्रिय फिल्म थी। उसके सारे गाने बहुत पसंद किए गए थे। एक गाना जो कि जॉनी वॉकर पर फिल्माया गया था, सर जो मेरा चकराए, के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। एस डी बर्मन की जीवनी लिखने वाली सत्या सरन बताती है।
गुरुदत्त जी लंदन से एक रिकॉर्ड ले आए थे और वो चाहते थे कि इस म्यूजिक को जरा सा कॉपी करें। तो अबरार साहब से जब मेरी बात हुई मेरे गुरुदत्त बुक के लिए, तो वो उन्होंने ये कहानी बताया कि उनको सौंपा गया ये काम कि जाओ एसडी से कह दो कि इस पे एक गाना बना ले जॉनी वॉकर के लिए। और अबरार बड़े घबराए हुए गए क्योंकि एसडी तो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे और अगर वो कुछ नहीं चाहते थे तो वो निकल जाते थे, उस फिल्म से ही निकल जाते थे। तो उन्होंने कहा कि देखो गुरुदत्त तो ये बोल रहे हैं कि इस पे गाना बनाओ, ही इज़ फॉलन इन लव विद दिस ट्यून। तो एसडी ने कहा ये क्या है, पब्लिक तो मुझे मारेगा। तो बोले मैं क्या करूँ, अब मैं गुरुदत्त से भी नहीं बोल सकता हूँ कुछ, वो तो हमारे प्रोड्यूसर हैं। तो फिर एसडी ने उस गाने को लिया और ऐसे उसको मतलब ट्विस्ट दे दिया कि एक तो बहुत पॉपुलर बना सर जो तेरा चकराए, और जिस ट्यून पे वो बैठा हुआ था जिसमें से वो इंस्पायर होके निकला था वो एक अंग्रेजी फिल्म हैरी ब्लैक एंड द टाइगर से था। और उस हैरी ब्लैक एंड द टाइगर के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे वो इंडिया में आई थिंक अ ईयर लेटर ही केम, और उन्होंने ये धुन सुन के एस डी बर्मन को कॉम्प्लीमेंट किया कि अरे वाह क्या ट्यून बनाए, और पहचान भी नहीं पाए कि उनके ही फिल्म से निकाला।
आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए।
इसी फिल्म के बनने के दौरान एस डी बर्मन और साहिर लुधियानवी के बीच तकरार हो गई और साहिर ने जोर दिया कि उन्हें पारिश्रमिक के रूप में एस डी बर्मन से एक रुपया ज्यादा दिया जाए।
एस डी बर्मन की टक्कर काफी लोगों से हुई और साहिर के साथ दो बार, पहली टक्कर तो हुई थी जब बाजी बन रही थी और साहिर ने गजल लिखा था और उसको जब एसडी के पास दिया गया कि ये तुम म्यूजिक में सेट कर दो, तो एसडी की आदत थी कि वो पूछते थे कि ये कौन गा रहा है, किस सीन है, क्या पहना हुआ है, कौन सी हीरोइन है, कौन सा हीरो है। और ये पता चला कि ये गीता बाली गा रही है और वो एक गैंगस्टर की मॉल है। तो उन्होंने कहा कि ये गज़ल तो है पर वो सितार लेके तो नहीं बैठ सकती है, तो मतलब ड्रेस पहनी हुई है, तो गिटार दे देंगे। तो जब गिटार दिए तो म्यूज़िक भी बदल गया, तो वो बन गया एकदम बिल्कुल फास्ट पेस्ड। और जब साहिर जी इस गाने को सुने तो उनको बहुत गुस्सा आ गया, ये बोले ये क्या बना दिया तुमने मेरे गीत को। तो वहाँ पहले टक्कर, तो फिर विजय आनंद को उनको मनाना पड़ा कि ठीक है आपका पोएम सही सलामत है, खाली म्यूज़िक बदल गया है, मूड बदल गया है। तो यहाँ पे जब प्यासा के बाद साहिर ने कहा कि देखिए अगर हमारा पोएम नहीं होता तो आपका तो ट्यून ट्यून ही रह जाता, और इसीलिए पोएट्स को एक रुपया ज़्यादा देना मिलना चाहिए क्योंकि हमारी स्टेटस ज़रा ऊँची है आप लोगों से। तो उसके बाद उन्होंने कभी साथ में काम नहीं किया।
ये तो रही साहिर लुधियानवी की बात। एस डी बर्मन एक बार लता मंगेशकर से भी नाराज हो चुके हैं और 5 साल तक दोनों ने एक साथ काम नहीं किया।
लता मंगेशकर 1957 सितारों से आगे एक तो गाना था, उसमें पहले टेक तो हो गया एंड एस डी बर्मन ओके भी किया। ओके करने के बाद एस डी बर्मन ने फिर लता जी को फोन किया, मेरा लगता है दूसरा टेक लेने पड़ेगा। लता जी का टाइम नहीं था, उन्होंने उस टाइम में कोई बाहर जाना था, तो लता जी ने बोला मेरा अभी नहीं, मैं आने का बात कर सकता। तो सचिन कर्ता का बहुत से जिद्दी आदमी थे, साथ साथ में उन्होंने उनको बोला यू आर रिजेक्टेड, तुम्हारा गाना तुमको गाना नहीं पड़ेगा बोल के आशा को लेके आया। इसके बाद में 5 साल बाद 1962 में आर डी बर्मन से रियूनियन बिटवीन एस डी बर्मन एंड लता वाज डन बाय आर डी बर्मन। वो छोटे नाम का वो चाहता था हिज फर्स्ट मूवी एंड ही लता मस्ट सिंग। उसको पिताजी को बोला आप जो बोले नहीं बोले, हम लता जी को फोन कर रहा है, लता जी हमारा गाना गाएगा। लता ने गाना भी गाया एंड जब बात हुआ था तो एक जगह में आरडी बर्मन बोला था, लता जी भी बहुत उत्सुक थे वो वापिस आने के लिए। आके बंदिनी में जो गाना गया था बहुत मर्मस्पर्शी है वो गाना।
एस डी बर्मन के बारे में मशहूर था कि वो बहुत कंजूस थे और लोगों को चाय और खाना ऑफर नहीं करते थे। एक बार उस्ताद रईस खां उनसे मिलने गए। जब वो उनसे बात कर रहे थे तो पंचम यानी आर डी बर्मन पीछे से उन्हें इशारा कर रहे थे कि वो एस डी से कहें कि उनका चाय पीने का मन कर रहा है।
लोग कहते हैं कि एस डी बर्मन बहुत कंजूस थे। गुरुदत्त जी ने भी कहा है कि एक बार वो जब जाते थे उनके घर सॉन्ग सिचुएशंस के लिए तो पूछेंगे कि मैं अभी खाना खा के आता हूँ, तुम तो खा के आए होगे ना, तो वो मतलब उनको ज़रा लगता था कि शायद अंदर मेरी वाइफ को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं सबको खाने पे बुलाऊँ, उसको कुक करना पड़ेगा, तो वो एक रेपुटेशन सा बन गया कि ये बहुत कंजूस है। तो यहाँ भी रईस खान कहते हैं कि जब वो गए थे मिलने तो पंचम दादा के पीछे बैठा था और वहाँ से इशारा करते रहा कि चाय मांगो चाय मांगो, तो ऐसे प्याला दिखाते हुए, तो इन्होंने मैं चाय पीऊँगा, तो चाय आई तो इसने भी जल्दी से पी लिया क्योंकि चाय भी रेशन करके मिलते थे उनको घर पे। और पान, पान एक और चीज़ थी जो किसी को नहीं, दादा कभी नहीं देते थे। कभी कभी वहीदा जी कहती हैं कि बहुत एक बार उनको ऑफ़र किया गया और लता जी जब बहुत अच्छा अगर रिकॉर्डिंग चलता था तो उनको ऑफ़र दिया जाता था। और अबरार साहब कहते हैं कि मैं तो उनके सामने चुरा के ले जाता था और बोलता था ठहरो, अगले फिल्म में मैं नई म्यूज़िक नहीं बनाऊँगा अबरार। बहुत चिढ़ते थे क्योंकि उनका पान उनके लिए बहुत प्रेशियस था।
एस डी बर्मन का सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का था। एक बार वो खार के रामकृष्ण मंदिर गए जहां उन्होंने अपने दोनों जूते अलग अलग जगहों पर रखे ताकि कोई चोर उन्हें उठाकर ले न जा सके।
उन्होंने सोचा एक बार खार में रामकृष्ण मिशन मंदिर में जाए प्रणाम करे, तो मंदिर में अंदर प्रवेश करने का पहले है उन्होंने जूता का एक पाती एक जगह में रखा, दूसरा जूता में उन्होंने और दूर में जाके देखा और भी जूता है उसका अंदर में घुसा दिया। तो उसका जो कंपेनियन था साथ में उन्होंने पूछा ये आप क्या किया करता, आप क्यों इधर उधर रखा दोनों धाम जूता। तो कुत्ता ने बोला अरे भाई आप तो जानता नहीं आजकल चोर का उपद्रव बहुत बढ़ गया। जो संगी था वो बोला अगर चोर दोनों जूता निकाल के निकल जाए तो कुत्ता ने बोला अरे चोर इतना परिश्रम करे तो जूता लेना ये उसका चाहिए।
आर डी बर्मन ने बचपन से उनके साथ सीखना शुरू किया था। उनके देखते देखते वो संगीत के शिखर पर पहुंच गए थे। कभी कभी वो उनसे निराश भी होते थे, खासतौर से जिस तरह से उन्होंने हरे राम हरे कृष्ण का संगीत दिया था। लेकिन एक बार जब वो सुबह की सैर पर निकले तो पीछे से किसी ने पुकारा वो देखो आर डी बर्मन के पिता जा रहे हैं।
आई थिंक देयर वाज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर हिम। बचपन से लड़का टैलेंटेड है, म्यूजिक की तरफ इंटरेस्टेड है और जब वो गाने लगा उन्होंने कहा कि तुम पहले तबला सीखो रिदम सीखो उसके बाद ही तुम गाओ और फिर तुमको अगर कंपोज करना है तो आगे बढ़ना, और उनको गाइड करते रहे। अब अमर प्रेम में जब वो बड़ा नटखट है कृष्ण कन्हैया गाना बना के एस डी को सुनाते हैं तो एस डी कहते हैं देखो ये तो भजन जैसे लग रहा है पर ये तो एक औरत गा रही है जो यशोदा जैसे, ये जिसके लिए गा रही है वो उसका बेटा नहीं है, तो वो ममता तुम कैसे लाओगे इस गाने में। और उन्होंने थोड़ा सा उस म्यूज़िक को ट्वीक कर दिया जिससे भजन भी रहा और ये वात्सल्य भी निकल आए इसमें। पर कभी कभी उनको लगता था कि ये लड़का बिगड़ रहा है, ज़रा ज़्यादा ही इंस्पिरेशन लेके कर रहा है, तो वो उनको अच्छा नहीं लगता था। हरे राम हरे कृष्णा उनको ही ऑफ़र किया गया था पहले, देवानंद तो उनके ही पास आए, उन्होंने कहा ये थीम मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है तो मेरे लड़के के पास चले जाओ वो कर लेगा, वो आज का लड़का है वो कर लेगा। कभी कभी जब आरोप दिया जाता है आरडी को कि ही वॉज इंस्पायर्ड बाय सम अदर म्यूज़िक, मतलब थोड़ा लिफ्ट करते थे, वो बात इनको अच्छी नहीं लगती थी। और फिर टक्कर इनकी होती थी अकम्पनीज के बारे में, और एक बहुत पॉइग्नेंट स्टोरी है जहाँ पे ही इज़ वेटिंग फॉर हिज अकम्पनीज और कोई नहीं आता है, और ये जाते हैं वहाँ और देखते हैं कि जितने लोग इनके यहाँ आने थे सब वहाँ मद्रास चले गए हैं आरडी के साथ रिकॉर्डिंग के लिए। बहुत चिढ़ गए क्योंकि उनका डिसिप्लिन, उनका रूटीन खराब हो गया। तो वो शिव जी और हरी जी को बुलाए और बोले तुम लोग दोनों ही इस गाने के लिए बजाओगे। अभिमान के गाने के लिए उन्होंने दोनों ही बजाया, कंपोज भी किया, म्यूजिक इंटरलूड्स और बजाया।
आए हाय तेरी बिंदिया रे सजन बिंदिया ले लेगी तेरी निंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे।
एस डी बर्मन टेनिस के बहुत शौकीन थे, फुटबॉल के लिए भी वो पागल थे। ईस्ट बंगाल उनका पसंदीदा फुटबॉल क्लब था। जब वो कोमा में चले गए और उनकी सद्बुद्धि पूरी तरह से चली गई तो उनको बताया गया कि उनकी टीम ईस्ट बंगाल ने मोहन बगान को 5-0 से हरा दिया है, तो उन्होंने अचानक एक क्षण के लिए अपनी आंख खोल दी।
अगर हार जाता तो खाना बंद कर देता। इसका प्रमाण ये है जब उन्होंने पैरालिटिक अटैक में कोमा में चला गया, 5-6 महीना जीवित थे। आरडी ने बोला एक बार फिर आग खुला था जब ईस्ट बंगाल मोहन बगान को 5 गोल में हराया था एफ ए में, तो उसका खबर चिल्ला चिल्ला के आरडी को सुनाया था जब वो कोमा में थे। एक बार उन्होंने आग खुला, इसके बाद आरडी आग खुला। इस शो व्हाट अ सपोर्टर ही वाज।
आज भी एस डी बर्मन के सैकड़ों गाने हम सुनते हैं बगैर ये जाने हुए कि इनको सुर किसने दिया था।
लोग गानों को याद रखते हैं पर जो बनाते हैं, जो लिखते हैं, वो भूल जाते हैं। और आजकल जो रेडियो स्टेशंस हैं वो जैसे पुराने, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो कोई भी गाना बजता था तो फिल्म का नाम भी बताया जाता था, लिरिसिस्ट का नाम भी बताया जाता था, म्यूजिक डायरेक्टर का नाम, सिंगर का नाम, तो एक कॉन्टेक्स्ट मिल जाता था हमें। लता जी की आवाज़ का एवोल्यूशन पता चल जाता था। आजकल कोई कुछ नहीं बताता, तो मुझे लगता अगर ये बताते जाएं तो उनको पता चलेगा कि एस डी बर्मन आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं उनके म्यूज़िक, रेडियो स्टेशंस बजाते हैं पर किसी को पता नहीं है कि ये म्यूज़िक किसकी है, नौशाद साहब की है कि रोशन साहब की है कि एस डी बर्मन की है।
हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो।
रेहान फजल, बीबीसी दिल्ली।
सचिन देव बर्मन पर रेहान फजल की विवेचना अगर आप दोबारा सुनना चाहें तो कल सुबह विश्व भारती कार्यक्रम में सुन सकते हैं। और आइए अब दिन भर में सुनते हैं खेल समाचार। आदेश कुमार गुप्ता आ चुके हैं स्टूडियो में। जी आदेश जी।
जी निखिल, अगर बात की जाए भारत और न्यूजीलैंड के बीच कोलकाता में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच की, तो आज जब तीसरे दिन का खेल समाप्त हुआ तब भारत का स्कोर 8 विकेट पर 227 रन था, लेकिन पहली पारी के आधार पर भारत को 112 रनों की बढ़त मिली, जिसके आधार पर अब भारत न्यूजीलैंड से 339 रन आगे है और उसके 2 विकेट बाकी हैं। आज जब खेल समाप्त हुआ तब रिद्धिमान साहा 39 और भुवनेश्वर कुमार 8 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि इससे पहले रोहित शर्मा ने 82 और विराट कोहली ने 45 रनों की शानदार पारी खेली। और इससे ठीक पहले आज न्यूजीलैंड की पहली पारी 204 रनों के स्कोर पर समाप्त हुई। भुवनेश्वर कुमार ने 48 रन देकर 5 और मोहम्मद शमी ने 70 रन देकर 3 विकेट लिए। इस तरह से कल जब भारत मैदान में उतरेगा तो उसके सामने सबसे बड़ा लक्ष्य यही होगा कि इस 339 रन की बढ़त को जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुँचाए, और उसके बाद न्यूजीलैंड के सामने जो जीत के लिए लक्ष्य होगा। तो अभी तक जिस तरह से 339 रनों की बढ़त है, काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है न्यूजीलैंड की राह।
जी बहुत शुक्रिया आदेश कुमार गुप्त खेल समाचारों के लिए। और अब आपसे वक्त है विदा लेने का, तो आइए प्रमुख समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में चरमपंथियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक के भारतीय सेना के दावे के बाद बढ़े तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने किसी देश पर हमला नहीं किया है। भारत आज संयुक्त राष्ट्र में पेरिस पर्यावरण संधि पर आधिकारिक मंजूरी देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टेरेसा मे ने कहा है कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन की विदाई की औपचारिक प्रक्रिया अगले साल मार्च के अंत में शुरू की जाएगी। कंजर्वेटिव पार्टी के सम्मेलन में टेरेसा मे इसकी रूपरेखा सामने रख रही हैं। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया हरिता कांडपाल ने और आज स्टूडियो संभाला है अजीत सारथी ने। आपसे 1.5 घंटे बाद फिर मुलाकात होगी घटना चक्र में। निखिल रंजन को सभी साथियों संग दीजिए अनुमति। नमस्कार।